साले।
आप में से पता नहीं कितने लोग मुझे काफी देर से जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन मेरे बारे में बस एक बात आपको अगर पता होनी चाहिए तो एक ये है कि मुझे हमेशा एट ऑल टाइम्स 24/7 सर में दर्द हो रही होती है। ये कोई 2 साल पहले शुरू हुआ था और उस वक्त से मुझे कॉन्स्टेंटली सर में दर्द होती रही है। आज दोपहर को मैं सो रहा था और मैं जब उठा हूँ तो 2 साल बाद मेरे सर में कोई दर्द नहीं हो रही थी। मुझे काफ़ी खुशी हो रही थी इस बात पे। बहरहाल मैं ऊपर गया, अपनी बहन से मिला, मैंने उसको सलाम किया, मैंने पानी का एक गिलास पिया। मैं पानी का गिलास पी रहा था तो मेरी बहन, जिसका नाम हम शमीमा रख देते हैं, बहरहाल शमीमा मुझे कहती है कि अहमद तुम्हें क्या लगता है कि कोरोना ख़त्म कब होएगा? मैंने कहा बस कल ख़त्म हो जाएगा। वो तो आगे से हंसना शुरू होगी बहरहाल, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने बड़ी गहरी बात की और ये बात मुझे किस तरह पता है, मुझे इस तरह पता है क्योंकि मैंने की है। और मैंने जो भी कभी बात की है काफ़ी संजीदा और थॉट प्रोवोकिंग होती है। अब मैंने जब कहा था कि कोरोना कल ख़त्म हो जाएगा, उसका ऑब्वियसली ये मतलब नहीं है कि कोरोना कल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप इस तरह से कोरोने को देखते रहेंगे कि यार ये इसने तो 8 महीने बाद ख़त्म होना, मैं क्या करूं इतने टाइम तक, तो ज़रा उसके साथ डील करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इसको बस ये सोचें कि यार बस कल ख़त्म हो जाएगा। मेरी नानी जो है मेरे मामू को जब कोई चीज़ वादा करती थी कि यार ये तो मैं मतलब बेटा ये आपको बाद में मिल जाएगी, तो वो कहती थी बेटा कल मिल जाएगी। तो फिर कल मेरे मामू जो हैं वो आकर कहते थे कि अम्मी मुझे आपने कहा था कि कल मिल जाएगी चीज़, तो कहाँ है? तो नानी कहती थी कल तो कल है बेटा, आज तो आज है। उसी तरह कोरोने के साथ भी इसी तरह अगर डील करें तो शायद नहीं, 100% बात सच है कि आपकी इसमें हेल्प हो जाएगी। मेरा नाम शमीम है और जो आप शो ये देख सुन रहे हैं उसका नाम है दी मज़दार शो। ओरिजिनली इसको मैंने वीडियो फॉर्मेट में फिल्म करना था, एडिट करना था, IGTV पर डालना था, YouTube पर डालना था, लेकिन मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ किया कि ना सिर्फ मुझे एडिटिंग नहीं आती बल्कि मेरा कंप्यूटर एडिटिंग के काबिल नहीं है। उसको एडिट करते करते मेरा कंप्यूटर क्रैश हो जाता था। एक एपिसोड बहरहाल बन गया था, उसको मैंने दिमाग से भी डिलीट कर दिया, अपने कंप्यूटर से भी कर दिया। बहरहाल मैंने अपने दोस्त आदिल शफीक को उसका एक लिंक भेज दिया था तो वहाँ से मैं उसको खींच सकता हूँ। शायद अगर कभी फ्यूचर में अगर मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा, लेकिन दैट्स वेरी अनलाइकली। मैंने देखा था कि कैमरे से बात करना मेरे लिए थोड़ा ज़रा ज़्यादा वो था, अपने ट्रेन ऑफ थॉट को बरकरार रखना मुश्किल लग रहा था, लेकिन इसको भी ये भी कोई ज़्यादा आसान नहीं है। मैं इस वक्त अपने कमरे में बैठा हूँ सोफे के ऊपर चौंकड़ी मारकर। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो चौंकड़ी क्या होती है, यार जब आप अपने लेग्स आगे क्रॉस करके बैठते हो जो भी, तो अच्छा मुझे नहीं पता था कि मैं हेडमिस्ट्रेस जो है ना हमारी, जब मैं था नर्सरी में तो हमारी कहती थी क्रॉस योर लेग्स इस तरह करके कहती थी कि इस तरह करके बैठो। आई डोंट नो क्यों, लेकिन वो बस कहती थी जब लाइक हम कोई फिल्म देख रहे हैं या कुछ या इस तरह करके। तो हाँ हमारी एडमिस्ट्रेस हमें फिल्में भी दिखाती थी, वो भी अभी आराम से मैं बताता हूँ, बड़ी मज़ेदार कहानी। तो मैंने मज़दार गलती से कहा और फिर भी उसी तरह पुठे तरीके से कहा। बहरहाल मैं क्या कह रहा था, हाँ तो कहती थी क्रॉस योर लेग्स और इस तरह करके वो कहती थी। तो मैंने एक दफ़ा उनको कहा कि मैम ये तो चौंकड़ी होती है, और वो बेचारी बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो सारी ज़िंदगी कॉन्वेंट में पढ़ी थी, पता नहीं हमारी
यूके के अंदर सारी ज़िंदगी रहती थी, पाकिस्तान आके उन्होंने स्कूल शुरू कर लिया था, तो वो उनका जो है ना, उनको चौंकड़ी का लफ्ज़ इतना गवारा नहीं था। बहर हाँ, वो हमें फिल्में भी दिखाते थे वो लोग। और एक पर्टिकुलर चीज़ जिसने मुझे और मेरी बहन, क्योंकि हम दोनों उसी स्कूल से पढ़े थे, हम दोनों को काफ़ी तंग किया था, वो ये था कि हमें उन्होंने सेकंड ग्रेड के अंदर पूरी क्लास को बिठाकर द बॉय इन द स्ट्राइप्ड पजामाज दिखाई थी। और क्योंकि उन्होंने आई गेस टॉरेंट से डाउनलोड की थी, कुछ भी उसके अंदर सेंसर नहीं था, बहुत मज़ा आया था। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरा चाइल्डहुड मेमोरीज में से सबसे अच्छी वालों में से एक तो वो है जिसके अंदर मैं सेकंड ग्रेड में हूँ, अपनी क्लास के साथ बैठा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ और उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसको गैस चेंबर के अंदर मार दिया जाता है। काफ़ी जिसे कहते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जिसने मेरी पर्सनालिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट किया था। लेकिन उसके अंदर उन्होंने हिटलर को दिखाया तो नहीं था, लेकिन मैं फिर भी हिटलर के साथ उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ना एग्री करने लग गया था कि देखो, अब मैं ये नहीं कहता यहूदी इंसान नहीं है। अच्छा, अब ये मुझे सोच समझ के कहना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहूदी इंसान नहीं है, बिल्कुल हैं, इंसान हैं, लेकिन आप क्या करो अगर आपको रियलाइज़ हुए कि आपकी सोसाइटी कुछ इंसानों के एग्जिस्टेंस के बग़ैर ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है, उस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए। अब हमारे पास, हमारी माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यार वो कोई रेपिस्ट होते हैं, कोई यार मर्डरर होते हैं, उनको जान से मार देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें पता है कि यार उनके साथ सोसाइटी हमारी कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आपको पता है कि यार ये रेस है, ये हमेशा कोई ना कोई चवल मारते रहते हैं, तो वुड यू बी बेटर ऑफ विदाउट देम? और फिर इन दैट केस क्या होलोकॉस्ट ठीक थी? आई डोंट नो, मैं इसके ऊपर कोई राय नहीं दे रहा, मैं बस सवाल कर रहा हूँ, और सवाल करना मेरा हक है, और मैं इस हक को पूरा इस्तेमाल करूँगा। होलोकॉस्ट से काफ़ी चीज़ें याद आती हैं कि सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये असल नहीं है, ठीक है। अब पहले तो मैंने कहा था ना कि मैं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मुझे अब इसमें असल में लगता है कि होलोकॉस्ट असल नहीं थी। एंड हेयर मी आउट, मुझे पता है कि तुम लोग इससे पहले कि मुझे लेबल कर दो कि यार शमीम भाई आप तो वो यार वो जो कंस्पिरेसी थियरिस्ट होते हैं, कहते हैं यार होलोकॉस्ट असल नहीं है, अर्थ फ्लैट है, क्या कहते हैं एल्विस प्रेस्ली मरा नहीं है, फलां ढींगा वगैरह। लेकिन नहीं यार, मैं बता रहा हूँ, होलोकॉस्ट जो है ना असल में हुई नहीं थी। अब नाउ हेयर मी आउट, अब ब्रिटिश जो हैं वो जीते हैं एक जंग, ठीक है, उनको लगे हैं अच्छे खासे साल, ठीक है। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज, अपने मुल्क को उन्होंने गरीब कर दिया, लोगों को इतने इसमें दुश्वारी में से गुजारा, कितनी लोगों की फैमिलियाँ उजड़ गईं, और उन्होंने उनको एक्सप्लेन करना था कि यार हम जिसके खिलाफ लड़ रहे थे वो एक्चुअली इतने ईवल थे कि उनके खिलाफ लड़ते लड़ते इतना डैमेज हो जाए, आप लोगों को इतनी आप लोगों को दुश्वारी उठानी पड़े। तो एंड अब द जर्मन्स दे वर जस्ट, जहाँ तक जो मेरा ख्याल है, ठीक है, अब मैं हो सकता हूँ सही हूँ, हो सकता है गलत हूँ, प्रॉबली सही हूँ कि मैं ज़्यादातर सही होता हूँ, जो जर्मन्स थे यार दे वर जस्ट अनदर कंट्री, उनको अपनी फिक्र थी, उनके शायद थोड़े से मेथड्स फ़र्क थे, लेकिन आई डोंट थिंक दे वर एज बैड एज दे वर मेड आउट टू बी, ठीक है। ब्रिटिश जीते हैं, दे गेट टू कंट्रोल कि क्या चीज़ रिपोर्ट होती है, क्या चीज़ नहीं होती। Nobody knew about the Holocaust until the war was won, ठीक है। ऊपर से अब वो ब्रिटिश जाके जो मर्जी कह दे कि हाँ भाई ये कमरा है, इसके अंदर यहूदी मारे थे, इसके अंदर चूल्हा लगा हुआ है, इसके अंदर यहूदियों को जलाया था, इसके अंदर गैस चैम्बर है, मैं बता रहा हूँ इसके अंदर यहूदी डाले हूँ, ठीक है यार, कुछ भी हो सकता है यार, हो सकता है कोई LPG के टैंक उन्होंने रखे, खैर तो ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल आई मीन हो सकता है कि वो उसका वो इंटेंडेड पर्पज़ ना हो, अगर वो अब ठीक है काफ़ी सारा प्रूफ था, लेकिन वो प्रूफ बहुत आराम से प्लांट किया जा सकता है यार, ये 1945 है यार, उसके अंदर मतलब कोई ये भी नहीं कहता था कि यार आपने फ़ोटोशॉप किया, किसी को फ़ोटोशॉप का पता भी नहीं था, और क्या वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स होती हैं, वो तो इट कुड मीन एनीथिंग, ठीक है ना। तो आई गेस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मैं सही हूँ और पूरी दुनिया को ये बात नहीं बात है, लेकिन मैंने अब सबको बता दिया, तो प्लीज़ डू व्हाट यू वांट विद दैट इंफॉर्मेशन। ऑल्सो एन फ्रैंक असल में एग्जिस्ट नहीं करती थी, इट वॉज जस्ट अ सॉब स्टोरी टू टेल एवरी वन ताकि ब्रिटिश साइड ज़्यादा कूल लगे, ठीक है। देर इज़ नो रीज़न दैट एन फ्रैंक शुड वुड हैव एग्जिस्टेड, ठीक है ना। वही वाली पूरी बात है, देर इज नो प्रूफ दैट शी एग्जिस्टेड, देर इज जस्ट अ पिक्चर ऑफ हर एंड देर इज़ अ डायरी, ठीक है। अब आपने अब ब्रिटिश जो हैं वो जीते हैं जी जंग, ठीक है। अब वो जाएँ जाके एक जी किसी बहुत कोई सेक्सी से राइटर को जाके आए यार एक जो है ना बच्ची की ना आप पॉइंट ऑफ व्यू से एक लिखो पूरी कहानी और इसको आप इसको हम पब्लिश कर देंगे, ठीक है। तो वो कहानी लिखता है, ठीक है ना। अब इतनी अब यार एन फ्रैंक तुम्हें लगता है कि एन जो भी ये सुन रहा है आपको लगता है कि एक 11-12 साल की लड़की ने वो डायरी लिखी है, मतलब अगर आपको भी पढ़ के देखो, ठीक है ना। और ऊपर से वो भी यहूदी, ठीक है। अब लेट्स नॉट गेट इनटू इट, आई एम नॉट रेसिस्ट, आई एम नॉट एंटी सेमिटिक, ठीक है। लेकिन अब देखो उनको ना एजुकेशन दी जाती थी उस तरह से, फलाट नहीं है उनके साथ बड़ा इतना एल कराया जाता था उनको, और वो बैठे यहाँ पे जी शेक्सपियर वाली अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं यार मैं नहीं मान सकता, अब आपने मानना है उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ काफ़ी चीज़ें। अच्छा जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट, मुझे नहीं पता कि मैं इसको पोस्ट करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कभी भी इसको प्लान नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने टेंजेंट्स को भूलूंगा नहीं, उनको मैं एक्सप्लोर करता रहूँगा, उन्हीं के ऊपर चलता रहूँगा, और उन्हीं से मैं वही डिक्टेट करेंगे कि मैं अपनी पॉडकास्ट पर बात क्या करता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ सामने मेरे एक वो रेडियो पड़ा हुआ है, मेरी नानी ने मेरे लिए लिया था, ट्रांजिस्टर रेडियो है, इसके ऊपर FM है, MW है और SW, मीडियम वेव शॉर्ट वेव और FM से पता नहीं क्या होता है। तो और मुझे याद है कि ये मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया था जब O3 था, O लेवल्स का आखिरी साल था, मेरे पास फ़ोन नहीं होता था A लेवल से पहले। नो कि आप लोगों जो पुराने दोस्त हैं उनको मेरा पता है कि मेरे पास A लेवल से पहले स्मार्टफोन नहीं था, मेरे पास वो डब्बी वाला फ़ोन था, नोकिया वाला। तो उस ज़माने के अंदर मैंने रेडियो को बहुत इस्तेमाल किया और मैंने उससे काफ़ी आई गेस मतलब इंस्पिरेशन हासिल की है। जो मेरा म्यूज़िक का टेस्ट था, मेहदी हसन वगैरह, वो सारा मैं सुनता था FM 106.2 के। सुबह उनका होता था ओल्ड इज़ गोल्ड आवर इस तरह करके, सुबह 6 से 7 बजे। अब मैं लगाता था अपना अलार्म, ठीक है ना, अलार्म क्लॉक के ऊपर अलार्म लगाता था 6 बजे का, 6 बजे मेरा अलार्म क्लॉक उठता था, बजता था, मैं साथ ही उसको ऑफ़ करता था और अपना मैंने बिस्तर के साथ रेडियो लगाया था, रेडियो ऑन कर देता था और 1 घंटा मैं बैठ के मेहदी हसन के वो सुनता था, 7 बजे मैं जाके उठता था। मुझे बहुत मज़ा आता था यार, लेकिन बात ये है कि आप अब वो गाने मुझे याद हैं, मुझे पता है उनके नाम क्या हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है कि मैं YouTube के ऊपर जाके उनको सर्च करूँ या उनकी प्लेलिस्ट बनाऊँ। वो जो आपको जो 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 किक मिलती थी ना आपको रेडियो के ऊपर अपना पसंदीदा गाना सुनते हुए, वो YouTube could never यार, क्योंकि आई डोंट नो बहुत मज़ा आता था यार। और जो मेरा रेडियो पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस्ड रहा हूँ, मैं अभी भी रेडियो पाकिस्तान सुनता हूँ। इवन तो अब तो रेडियो मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ रेडियो पाकिस्तान सुनने के लिए, मुझे काफ़ी शौक था एक वक्त पे कि मैं वहाँ पे काम करूँ। मेरी अम्मी की कज़न रेडियो पाकिस्तान क्वेटा की ब्रॉडकास्टर थी और उनकी आवाज़ उसके ऊपर आपको सुनाई देती थी, तो उनसे भी मैंने थोड़ी बहुत बात की थी। लेकिन असल में उसके लिए आपको अच्छी खासी ट्रेनिंग वगैरह करनी पड़ती। कहने को तो बंदा कह सकता है कि यार बस आपने जाके माइक में बोलते रहना है, अभी मैं यही कर रहा हूँ और आप जी आपने रेडियो के ऊपर न्यूज़ सुना दी, लेकिन नहीं, रेडियो पाकिस्तान वाले यार उनका बहुत अपना एक लेवल होता है, उन्होंने इतने तहम्मुल से बेचारे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान की खबरें होती भी ऐसी हैं कि और वो तमुल से बोल रहे होते हैं तो बंदा कहता है यार शायद सब कुछ ठीक ही है, और लेकिन सब कुछ ठीक नहीं होता बज़ाहिर, बिल्कुल ही प्यार से जी السلام علیکم، آپ ریڈیو پاکستان سن رہے ہیں، میرا نام کیا ہوتا تھا، ان کا نام نیلوفر تھا، میرا نام نیلوفر ہے، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان۔ اس وقت ریڈیو پاکستان کے دفتر میں 6:08 ہو رہے ہیں، برائے مہربانی اپنی گھڑیوں کو اس حساب سے تبدیل کر۔ آج کی خبروں کے اندر، لاہور کے اندر سلنڈر کا بم دھماکہ ہوا، 8 فوت ہو گئے، چیف جسٹس نے اس کے اوپر انکوائری کمیشن شروع کر دی۔ اتنے پیار سے بولتے تھے نا، بندہ کہتا تھا اچھا یار، اچھا سلنڈر پھٹ گیا، او ہو چلو آئی گیس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چیف جسٹس نے نوٹس تو لے لیا نا آخر کار، لیکن ہاں آئی گیس اچھا طریقہ ہے، اگر میں گورنمنٹ ہوں، ریڈیو پاکستان گورنمنٹ کا ادارہ ہے، آئی ووڈ وانٹ کہ جو پاکستان کی شٹی خبریں ہیں ان کو ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ یار آپ یہ ہو گیا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہو گیا، کیونکہ اب آپ یہ جس طرح یہ ریڈیو پاکستان جو ہے نا، ان کو ریٹنگ سے اتنا زیادہ فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو پیمنٹس ہوتی ہیں نا، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک فکسڈ اماؤنٹ ہوتی ہے، ان کو ہر سال وہ آنی ہے، لوگ سنیں نہ سنیں، تو ان کو اس طرح کی سنسیشنلزم کے اوپر ریزورٹ نہیں کرنا پڑتا جو آپ کے باقی ریڈیو چینلز اور باقی پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو کرنا پڑتا ہے، کہ یار اگر اب آپ جب اسکرول کر رہے ہوتے ہیں سارے ٹی وی چینلز، جو بندہ سب سے اونچا چیخ رہا ہوتا ہے دے گیٹ یور اٹینشن دا موسٹ، جس کے اوپر سب سے بڑا بڑا بریکنگ نیوز فلاں فلاں ڈھینگا، اور ساتھ اب آپ کا یہ جو ابھی پلین کریش ہوا ہے، جس کے اوپر سب سے بڑے بڑے جی وہ پلین اینیمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ جہاز تباہ ہو رہا ہے، وہ بندہ جی اس کے اوپر آپ کے اٹینشن سب سے زیادہ جاتا ہے، اس چینل کے اوپر آپ رک جاتے ہو۔ اب یہ اٹس لائک مور آف اے سب کانشیس تھنگ، مجھے نہیں لگتا کہ آپ اینی لسنر وڈ تھنک کہ کانشیسلی سوچ رہا ہوگا کہ یار یہ بندہ چیخ رہا ہے، یہ تو ضرور سچ بول رہا ہوگا، لیکن میں کیا کہہ رہا تھا، جو بندہ سچ بول رہا ہوگا، اگر ہاں ریڈیو پاکستان والوں کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہاں ان کے تو پیسے آنے ہیں تو آنے، انہوں نے اپنے طریقے سے بات کرنی ہے، وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں۔ اب پی ٹی وی نیوز کو دیکھ لو، وہ بھی کافی حد تک کیا کہتے ہیں، آپ ان کے اوپر پی ٹی وی نیوز لگاؤ بالکل آرام سے، جی اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بالکل کام انوائرمنٹ رکھی ہوتی ہے انہوں نے، لیکن کبھی کبھار ذرا زیادہ ہی کچھ کام ہو گئے ہوتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا، ایک اور جہاں یار جو پلین کریش ہوا تھا جس کے اندر جنید جمشید صاحب فوت ہوئے تھے، اس کے اندر جہاز کا آپ کے وہ ہماری آ رہی تھی ڈیتھ کاؤنٹ آ رہی تھی باقی چینلز کے اوپر، اور پی ٹی وی صاحب کہہ رہے تھے کہ مطلب پہلے تو وہ بتا ہی نہیں رہے تھے کہ جی جہاز کریش ہو گیا، اس کے بعد بہت آرام سے جی جہاز کریش ہو گیا، ابھی پتہ نہیں کہ جہاز، پہلے تو بتا رہے تھے کہ صحیح سے لینڈ نہیں ہوا، پھر پتہ نہیں وہ مطلب بات میں کافی ممبل کر رہا ہوں، لیکن آرام آرام سے انہوں نے بتایا تھا، اور آئی جسٹ امیجن کہ ایف آئی واز ون آف دا پیپل جو ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ، جن کے اپنے فیملی وغیرہ تھے اس کے اندر انوالو وغیرہ، تو ہاؤ وڈ آئی فیل کہ ایک نیوز چینل ہے میں، ایک طرف مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی جہاز تباہ ہو گیا، اور دوسری طرف پی ٹی وی نیوز کہہ رہے ہیں کہ جہاز مطلب کہہ تو یہ تو نہیں رہا کہ جہاز نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ مینشن ہی نہیں کر رہا۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ جب آپ کو اتنی ہیوی قسم کی خبر ملی ہوتی ہے، یو اسٹارٹ، پہلے تو آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہو نا، تو ایک جو آپ کا گورنمنٹ کا ایک آپ کا پی ٹی وی نیوز چینل ہے وہ اس کو مینشن ہی نہیں کر رہا، تو اٹ مائٹ میک دا ریجیکشن مینٹل اسٹیٹ اے بٹ لانگر دین اٹ نیڈس ٹو بی۔ اس وقت 7:27 ہو رہے ہیں، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میرے خیال سے مجھے اوپر جا کے ایک اور گلاس پانی پینا چاہیے، اور اپنی بہن کو جا کے کوئی اور چس مارنی چاہیے، تاکہ مجھے اگلے پوڈ کاسٹ کا کیو مل جائے کہ شروع کیسے کرنی ہے۔ میرا نام شمیم ہے، اور میرا نام اصل میں شمیم نہیں ہے، لیکن میں ابھی پوڈ کاسٹ کے اوپر بتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ کون سن رہا ہے، کتنا سن رہا ہے، اور اس کے اوپر میں نے بہت کنٹروورشل ایک دو باتیں کر دی ہیں، ایک دو سے ذرا سی زیادہ بھی، لیکن چلو یار بس، پھر انشاءاللہ آرام سے پھر ملتے ہیں بعد، بائے۔